नंदिनी सिद्धांत के साथ शिव अय्यर से मिलने आई हुई थी। सिद्धांत बाहर था जबकि वो शिव के साथ अकेली थी। नंदिनी शिव से शिवी की खुशियों के लिए सच बताने की भीख मांग रही थी। शिव को उसका बदला हुआ रूप देखकर बहुत हैरानी हुई। उसके सब सच कबूल करने के बाद नंदिनी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था और आज वो उसके सामने शिवी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। तुम सच में चाहती हो कि मैं सब बताऊं? जानती हो ना, इससे सबसे ज्यादा तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है, शिव ने कुछ भी बताने से पहले पूछा। मैं जानती हूं तुम मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करोगे, नंदिनी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तुम्हारा नया पति, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता, क्या वो ये जानता है कि तुम मुझसे यहां मिलने आई हो? उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो इंसान काफी अंडरस्टैंडिंग है। शिवी ने तुम्हें बताया होगा कि हम लंदन में सेटल हो गए हैं। तुम्हारे जेल से छूटते ही मैं उसे लेकर वापस लंदन चली जाऊंगी। तुम यहां अपनी लाइफ आराम से बिता सकते हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, बस सच बता दो, नंदिनी ने उसे हर पहलू समझाने की कोशिश की। वो शिव से सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही थी। उसकी बात सुनकर शिव हल्का सा हंसा और फिर कहा, अगर मैंने सब सच बता दिया तो सबसे पहले वो तुम दोनों को मारेगा और उसके बाद मुझे। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं, कितनी भी गलतियाँ की हों, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्या हम साबित कर सकते हैं कि तुम बेगुनाह हो, नंदिनी ने पूछा। शिव ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी हामी ने नंदिनी को हैरान कर दिया। वो चौंकते हुए बोली, अगर तुम्हारे पास सबूत था तो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों थे? तुमने बताया क्यों नहीं? अब ना मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। वो तुम्हें अभी नहीं बताने वाला, अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाओ यहां से, शिव ने बेरुखी से कहा। तुम सुधरने वाले नहीं हो, ठीक है मत बताओ, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हारी बेटी दिल टूटने की वजह से पागल क्यों हो गई है। और हाँ, गुस्से में मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और घर से भी निकाल दिया है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसका कोई नहीं है, उस लड़के ने भी उसे छोड़ दिया है। तुम यहाँ जेल में लावारिस की तरह पड़े रहो और तुम्हारी बेटी इस दुनिया में। उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए नंदिनी को रूखा बर्ताव करना पड़ रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने शिवी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, वो सिर्फ मेरी नहीं हमारी बेकी है, शिव ने गुस्से में नंदिनी को दोनों कंधों से पकड़ लिया। अब बस भी करो, तुम्हारे मुंह से उसकी परवाह अच्छी नहीं लगती। अगर इतनी ही फिक्र है तो सच बताओ और अपनी बेटी को उसकी खुशियां लौटा दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, यू नो वॉट शिवायर, तुम हमेशा से सेल्फिश रहे हो, नंदिनी ने अपनी भड़ास निकाली और वहां से जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि शिव की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैंने जो भी किया वो तुम दोनों के लिए किया, मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तुम दोनों से करता हूँ। दुनिया मुझे गलत समझे इस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम दोनों की नजरों में कभी गलत नहीं होना चाहता था। मैं डायरेक्टली तुम दोनों को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए जिस दिन ये हादसा हुआ था तब आखिरी बार मैंने तुम लोगों के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा था। शिवी बिल्कुल ठीक कह रही थी, उस दिन उसने मुझे स्टोर रूम में देखा था। मैं पहले बहुत नर्वस था, बहुत घबराहट भी हो रही थी। घबराहट के मारे चहलकदमी करते हुए मेरी नज़र शिवी पर पड़ी तो मैंने वो वीडियो बनाने का सोचा। कैमरा तुम्हें उसी स्टोर रूम में मिल जाएगा, दिल के हाथों मजबूर होकर शिव ने नंदिनी को सब बता दिया। वहीं नंदिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ठीक है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है, नंदिनी ने बिना पलटे जवाब दिया और वहां से चली गई। नंदिनी बाहर आकर सिद्धांत से मिली। सिद्धांत ने उसे देखते ही पूछा, कुछ बात बनी या नहीं? समझो बन गई है, हमारे घर पर एक कैमरा है, उसमें शिव का रिकॉर्ड किया हुआ कोई वीडियो है, वो स्टोर रूम में रखा हुआ है। हमें उसकी हर एक वीडियो को देखकर उसकी कॉपी निकलवानी होगी, शायद उसके जरिए हम शिव को बेगुनाह प्रूव कर सके, नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कल हमने पूरे स्टोर रूम की सफाई की थी, किसी को वो वीडियो कैमरा नजर क्यों नहीं आया, सिद्धांत ने हैरानी से पूछा। ऐसा नहीं है, मुझे वो दिख गया था, उसमें मेरे और शिव के स्वीट मेमोरीज थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम लोग देखो, बस तभी मैंने तुम लोगों की नजरों से छुपकर उसे वहां से हटा दिया था, नंदिनी ने बताया। चलो अब सबसे पहले मेरे घर चलते हैं और उस कैमरा की वीडियोस देखते हैं, सिद्धांत ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों वहां से बाहर की तरफ आने लगे। मिस्टर अय्यर बहुत जिद्दी हैं, आप लोगों के आने से पहले मैंने बहुत बार उनसे सच जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। शिवी के आने पर उन्होंने सच बता भी दिया तो उसे कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और आपने तो कमाल ही कर दिया मिसेस वॉटसन, सिद्धांत ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हाँ मेरी बात ही अलग है, मैं जानती हूँ, नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपको पहले ही आ जाना चाहिए था, सिद्धांत बोला। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे पहले ही ये स्टेप ले लेना चाहिए था, नंदिनी ने जवाब दिया। अचानक उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए, उसने सिद्धांत से कहा, क्या शिव ने तुम लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? सिद्धांत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सच कड़वा है, शायद आपको सुनने में तकलीफ हो लेकिन उन्होंने ये सब आपके लिए किया था। उनके हिसाब से वो हमेशा से ही फाइनेंशियल अप एंड डाउन फेस कर रहे थे। उनकी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और एट लास्ट उन्हें अपनी किसी बड़ी बीमारी का पता चला। जिन्होंने भी ये सब किया उन्होंने उनकी मेडिकल कंडीशन से लेकर फाइनेंशियल कंडीशन का फ़ायदा उठाया और इस काम के लिए राज़ी कर लिया। अब इसे उनकी बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती की, वो इतनी बड़ी सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो गए और जेल में मौत से भी बदतर ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन लोगों ने उनसे वादा किया था कि उन्हें जेल होने के बाद वो आपकी और शिवी की लाइफ अच्छे से सेटल कर देंगे। क्या सच में ऐसा था? लेकिन कभी किसी ने हमारी कंडीशन देखने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि कभी हमारे अकाउंट में पैसे भी नहीं आए। शुरुआती एक साल हमारा बहुत मुश्किल से बीता था। फिर मेरी मुलाकात जिम से हुई। मैं उनके लंदन ब्रांच के इंटरव्यू देने गई थी। मैं काफ़ी टाइम बाद जॉब कर रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया था। जिम ने मुझे मेरी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया। वहाँ काम करते हुए हम लोग क्लोज आए और फिर शादी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हम दोनों के मिलने के 6 महीने के अंदर ही हम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। नंदिनी ने उसे पूरी बात सिरे से बताई। फिर तो सच में सोचने वाली बात है मिसेज वॉटसन, उन लोगों ने मिस्टर अय्यर को इतना बड़ा काम करने के लिए मजबूर किया और फिर आप लोगों को आपके हाल पर छोड़ दिया। गौरव मलिक ऐसा करेगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा, सिद्धांत ने जवाब दिया। बातें करते हुए कब रास्ता बीत गया पता ही नहीं चला। वो लोग नंदिनी के पुराने घर के आगे थे। वहाँ से निकलते ही नंदिनी सीधे स्टोर रूम में गई और एक अलमीरा को खोला। उसमें वो कैमरा था। वो एक पुराने टाइप का डिजिटल कैमरा था। आप इसमें सबसे रीसेंट वीडियो प्ले करके देखिए, सिद्धांत ने कहा। हाँ, लेकिन ये चार्ज नहीं है, इसका मॉडल भी काफ़ी पुराना है, चार्जर मिलना मुश्किल है, नंदिनी ने मायूसी से कहा। आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं मार्केट में कहीं पता लगाता हूँ, सिद्धांत ने कैमरा लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नंदिनी ने अभी तक कैमरा उसके हाथ में नहीं रखा था। वो सोच रही थी कि सिद्धांत पर वो भरोसा कर सकती है या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिद्धांत के हाथ में कैमरा रख दिया।
कैमरा हाथ में आते ही सिद्धांत ने कहा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, इसके केस के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है, यहाँ तक कि मेरे और पापा का रिश्ता भी। अगर मिस्टर अय्यर बेगुनाह प्रूफ हो गए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। सिद्धांत कैमरा लेकर वहाँ से चला गया तो वहीं नंदिनी भी वापस घर जा चुकी थी। शाम का वक्त था, आर्य को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। उसने अपने पीछे से सबको वहाँ से वापस घर जाने को कहा था, लेकिन बंधन एक दिन रुकने के लिए ज़िद की तो देवेश जी और प्रतिभा जी मान गए। देवेश जी, प्रतिभा जी, शिवी और बंधन के साथ वहाँ घूम रहे थे। वहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें लगी हुई थीं जिसमें शिवी और बंधन शॉपिंग कर रही थीं, जबकि प्रतिभा जी और देवेश जी वहाँ का स्ट्रीट फूड एंजॉय कर रहे थे। थैंक गॉड मामी ने मामा को मना लिया, वरना इतनी अच्छी चीज़ें कभी नहीं ले पाते, बंधन ने एक ब्रेसलेट देखते हुए कहा। फिर उसने एक चूड़ियों का बंडल उठाया और शिवी के हाथ पर लगाकर कहा, कितनी अच्छी है ना ये कांच की चूड़ियाँ, आजकल तो इनका ट्रेंड ही नहीं रहा लेकिन फिर भी क्यूट लगती हैं। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं, शिवी उन चूड़ियों को पहनने लगी। उसने एक हाथ में काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहन ली थी, फिर उन्हें खनकाकर देखने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर बंधन और शिवी दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। तुम भी लो ना अपने लिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगी तुम पर, शिवी ने बंधन से कहा, तो वो भी अपने हाथ में चूड़ियाँ पहनने लगी। वहाँ से चूड़ियाँ खरीदने के बाद वो दोनों वहाँ के बाकी के स्टॉल्स पर घूमते हुए शॉपिंग कर रही थी। तभी देवेश जी और प्रतिभा जी वहाँ आए। चलो बच्चियों, काफ़ी देर हो गई है, तुम लोगों की जिद करने पर मैं यहाँ थोड़ी देर रुक गया, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, देवेश जी बोले। बस थोड़ी देर और मामू, बंधन जिद करने लगी। वो लोग बात कर रहे थे तभी शिवी के मोबाइल पर आर्य का कॉल आया। उसने कॉल पिक करने से पहले कहा, अब इसे क्या बोलूँ मैं, आर्य को पता चला कि हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये नाराज हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए भाभी, यहाँ भीड़ से थोड़ी दूर जाकर बात कीजिए ताकि उन्हें डाउट ना हो, बोल दीजिए कि हम घर वापस आ गए हैं, बंधन ने उसे सुझाव दिया। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से धर्मशाला की तरफ जाने लगी। उनकी धर्मशाला ज्यादा दूर नहीं थी। वो अपने कमरे में आई और कमरा बंद करके आर्य से बात करने लगी। मेरा कॉल उठाने में इतना टाइम कैसे लगा तुम्हें, शिवी के कॉल पिक करते ही आर्य ने कहा। आर्य, मैं बाथरूम में थी, आज एक ही दिन में दो बार ट्रैवल किया, इस वजह से परेशान हो गए, तुम जल्दी बताओ तुम्हें क्या कहना है, मैं सोने जा रही हूँ, शिवी ने उसे टालने के लिए कहा। मुझे बस ये कहना था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं सिद्धांत से बात कर लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना और अपना ध्यान रखना, एक छोटी बात करने के बाद आर्य ने कॉल कट कर दिया। शिवी वहाँ से वापस जाने लगी तभी उसके कानों में कुछ जानी पहचानी आवाज़ आई। उसने नोटिस किया वो आवाज़ उसके कमरे से कुछ ही आगे एक कमरे से आ रही थी। उसका दरवाज़ा हल्का खुला था। शिवी ने उसके अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे जिम दिखाई दिया। उसके अलावा वहाँ दो आदमी और थे। मिस्टर वॉटसन यहाँ हरिद्वार में क्या कर रहे हैं, वो तो क्रिश्चियन है, इस तरह की जगह तो छोड़ो वो तो चर्च भी नहीं जाते, शिवी को हैरानी हुई तो वो उनकी बातें सुनने लगी। अंदर जिम, गौरव मलिक और महेश था। महेश ने अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल रखे थे, हालांकि उसकी दाढ़ी घनी थी पर उतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी उसने साधु बनने पर लगाई थी। देख महेश, पहले ही समझा रहा हूँ, अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो तेरा हाल भी वही करूँगा जो उस रात उस लड़की का हुआ था, जिम ने गुस्से में कहा। और आप भूल रहे हैं उस लड़की का वो हालत करने वाला मैं ही था। मुझे धमकी मत दीजिए साहब, ऐसे ही मेरे दिमाग की खिसकी हुई रहती है। आपकी वजह से मुझे यहाँ दर दर भटकना पड़ रहा है, महेश भी गुस्से में बोला। उन दोनों के बीच की बहस बढ़ ना जाए इसलिए गौरव मलिक ने उन दोनों को शांत करते हुए कहा। शांत महेश, शांत, बोलते हुए उसने महेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सिर्फ 5 दिन की बात है, 5 दिन के बाद उसे सजा हो जाएगी और फिर तू आजादी से कहीं भी आ जा सकता है। मैं वैसे भी आजाद परिंदा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात याद रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम दोनों भी बचने वाले नहीं हो, महेश ने जवाब दिया। देखा देखा, ये मुझे आंखें दिखा रहा है, ये भूल गया है कि इसे पालने वाला मैं ही हूँ। तूने सिर्फ मेरा एक काम किया है, उस रात को अय्यर की जगह लेकर उस लड़के और उस लड़की को मारने की कोशिश की थी, वहाँ भी तूने काम अधूरा छोड़ दिया, उसके बावजूद मैंने तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होने दी और तुम मुझे ही आंखें दिखा रहा है। जिम ने गुस्से में महेश की गर्दन पकड़ ली। वहीं उनकी बातें सुनकर शिवी को साफ हो गया था कि वो किस बारे में और क्या बात कर रहे थे। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ने लगी तभी उसे पीछे से किसी का हाथ अपने मुंह पर महसूस हुआ। किसी ने अपने एक हाथ से उसका मुंह कसकर बंद कर रखा था तो दूसरे हाथ से उसने शिवी के दोनों हाथों को पकड़कर कंट्रोल में कर रखा था। जैसा कि मोनू जी ने कहा, ये अंत की शुरुआत है। आपको आगे के पार्ट में पता चल जाएगा कि शिवी के साथ क्या होगा। वैसे कोई आइडिया है कि शिवी को पीछे से किसने पकड़ा होगा? उसका कोई अपना या जिम का ही कोई आदमी? पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा।